अगर अपने कमाए पैसे अपने माँ बाप को नहीं दिए तो पैसे क्यों नहीं तुम्हारे पास? क्या करती हो तुम अपनी सैलरी का? यहाँ आने के बाद से तो तुमने कभी एक पैसा इस घर परिवार पर खर्च नहीं किया। तो महीनों से जो काम कर रही हो, कहाँ है सारा पैसा? जवाब दो इस सवाल का। वो हमें ज़रूरत पड़ी और हमने इस्तेमाल कर लिए। आहाना का ये जवाब सुनकर रूपाली जी एक बार फिर उस पर भड़क उठी। क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? जब रहती हमारे घर में हो, खाती पीती हमारे पैसों से हो, तुम्हारी सारी ज़रूरतें अक्षय पूरा करता है, फिर आखिर तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुमने सारे पैसे खर्च कर लिए? हिसाब चाहिए हमें कि तुमने कब, कहाँ और कैसे खर्चा किया। हम भी तो देखें कि सब मुफ्त में मिलने के बाद तुम्हारी ऐसी कौन सी ज़रूरत है जिसमें तुम्हारी पूरी कमाई चली गई। लो जी, अब तो एहसान भी गिनाया जा रहा था, उसकी खर्चों का हिसाब मांगा जा रहा था। आहना उनका ये रवैया देखकर हैरान थी, और उससे ज़्यादा हैरान इस बात से थी कि अक्षय चुप था। आहना ने एक नज़र अक्षय को देखा, जो आंखों में ढेरों सवाल लिए उसे ही देख रहा था। फिर उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, पिछले महीने हमारी मम्मी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। भैया ने एक महीने पहले ही ज़मीन खरीदी थी, जिसमें भैया भाभी की सारी सेविंग्स लग गई थी, और उस वक्त मम्मी की सर्जरी में लाखों का खर्चा आना था। इतनी जल्दबाजी में ज़मीन वापस नहीं बेच सकते थे, और हमारे पास पैसे रखे थे, तो हमने उन पैसों से मम्मी की सर्जरी करवाई, इसलिए अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अक्षय को अब याद आया कि पिछले महीने जयंती जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, और तब आहना कानपुर गई थी। एकाएक उसके जहन में बहुत से सवालों ने जन्म लिया। अभी वो उन्हीं सवालों में उलझा हैरान परेशान सा आहना को देख ही रहा था कि रूपाली जी की रोषपूर्ण आवाज़ वहां गूंज उठी। तुमने सारे पैसे अपनी माँ के इलाज में लगा दिए, और ऐसा करने से पहले हमसे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा? इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई तुम कि अब तुम सिर्फ उस घर की बेटी नहीं, इस परिवार की बहू भी हो, और हमारे प्रति तुम्हारी जवाबदेही बनती है? आहना उनकी ये बात सुनकर स्तब्ध रह गई थी। वो समझ ही नहीं सकी कि जब पैसे उसके, माँ उसकी, तो अपनी मेहनत की कमाई को अपनी माँ के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए उसे किसी से भी पूछने या इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों है? रूपाली जी शायद उसके पैसों पर हक जताना चाह रही थीं, और आहना ये समझने में असमर्थ थी कि आखिर इस घर की बहू होने का मतलब क्या है। क्या इससे वो अपने माँ बाप की बेटी नहीं रही, या उसे उनके लिए कुछ करने का हक नहीं रहा? वो ये बात बोलने ही वाली थी कि उससे पहले अनगई ने उन्हें टोक दिया। कम ऑन माँ, अब आप बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हैं। वो भाभी के पैसे थे, जिन पर उनका पूरा हक है। वो ये डिसाइड करने के लिए स्वतंत्र हैं कि उन्हें उन पैसों का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। उसके लिए उन्हें आपसे या हम में से किसी से भी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उन्होंने कोई फिजूल खर्ची में तो पैसे उड़ाए नहीं हैं जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं। आंटी की तबीयत खराब थी, पैसों की ज़रूरत थी, और उनकी बेटी होने के नाते भाभी ने उनका इलाज करवाकर अपना फ़र्ज ही पूरा किया है। कुछ देर पहले आपने ही तो कहा था कि एक बेटी का फ़र्ज़ है अपने पिता की मुसीबत में उनका साथ देना, तो वो बात माँ पर भी लागू होती है, और भाभी ने जो किया अपनी माँ के लिए किया, जिसमें कुछ भी गलत नहीं। अन्वय ठीक कह रहा है, बहू ने उन पैसों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। एक बेटी होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, हमें तो अपनी बहू पर गर्व है। अभिजीत जी तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, और उन्होंने अपना आशीर्वाद भरा हाथ आहना के सर पर रख दिया था। दोनों उसके समर्थन में खड़े थे, जबकि अक्षय अब भी खामोश था, और उसकी यही चुप्पी आहना को चुभ रही थी। रूपाली जी इन सब के बावजूद अभी आहना को और सुनाने वाली थीं कि उससे पहले ही अक्षय ने उन्हें रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, मम्मी, इस बात को अब यहीं ख़त्म कर दीजिए। आहना ने मुझे बताया था, और मुझे उनके उस फैसले से कोई एतराज़ नहीं था। जैसे आपका बेटा होने के नाते मेरे आपके प्रति फ़र्ज़ हैं, वैसे ही उन्होंने भी बेटी होने का कर्तव्य निभाया है, जिसमें कुछ गलत नहीं। इसलिए अब बात को और मत बढ़ाइए। रही बात फलक की, तो मैं उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। कुछ इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है भाई, वो एक नंबर के लालची लोग हैं। हम कितना भी कर लें, उनका लालच कभी ख़त्म नहीं होगा, और जब तक हम उनकी डिमांड्स पूरी करते रहेंगे, वो इसी तरह दीदी के नाम पर नई नई फरमाइशें करते रहेंगे। आज कार मांगी है, कल को घर मांगेंगे, तब क्या करेंगे हम? इसलिए अब तक हमें जितना देना था हमने दे दिया, अब उनकी डिमांड्स पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मिलना बंद हो जाएगा तो खुद ही मांगना भी छोड़ देंगे। और रही बात दीदी की, तो जीजू के भरोसे हमने उन्हें वहां भेजा है, तो अब दीदी उनकी जिम्मेदारी है। वो खुद देख लेंगे उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। फिर भी अगर वहां दीदी को ज्यादा परेशान किया गया तो हम उन्हें वापस अपने घर ले आएंगे। उन्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहां किसी को उनकी परवाह नहीं, और ना ही ऐसे रिश्ते में घुट घुट कर जीने की जरूरत है जहां उनके अपने पति उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। अन्वय आज काफी गुस्से में था, और उसने जो कहा उसमें कुछ गलत भी नहीं था। हालांकि रूपाली जी उससे सहमत नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र थी, पर उसके ससुराल वालों के लालच से और बार बार की उस धमकी से परेशान अभिजीत जी ने दिल कड़ा करके इस बार वो फैसला ले ही लिया था। जो बेटी का प्याल और उसके सुखी भविष्य का मुंह उन्हें नहीं लेने दे रहा था। अन्वय की बातों का असर हुआ और उन्होंने इस सिलसिले को यहीं खत्म करने का फैसला कर लिया, वरना ये ताउंद्र चलता रहता और उनकी बेटी को उनकी कमजोरी बनाकर यूं ही उनके परिवार को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता रहता। अक्षय, जो शुरू से इन सब चीजों के खिलाफ था और बस अपनी मम्मी पापा की बात का मान रखकर अब तक सारा बोझ उठा रहा था, फलक के ससुराल वालों की हर जायज नाजायज जिद और डिमांड पूरी करता आ रहा था। उसने सुमित से इस बारे में साफ साफ बात कर ली थी कि अगर वो उसकी बहन का संरक्षण कर सकता है, उसका साथ दे सकता है तो ठीक, वरना वो उसे अपने घर ले आएंगे। सुमित ने उसे आश्वस्त भी किया था कि वो अपने हिसाब से इस मैटर को संभालेगा और फलक की जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाएगा भी, वो निश्चिंत रहे। घर में आया तूफान थम गया था, सबकी चिंता कुछ कम हुई थी, पर इन सबसे रूपाली जी खुश नहीं थी और आज जो हुआ उसने आहाना के मन को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था।